पाठ 36 अध्याय 24 लैव्य व्यवस्था अध्याय 24 हमें विभिन्न विषयों के बारे में अध्यादेशों और नियमों का एक अलग संग्रह प्रस्तुत करता है। पहले कुछ पद यहोवा के पवित्र स्थान से संबंधित मामलों से निपटते हैं जो कि लैव्य व्यवस्था के इस युग के लिए जंगल का तंबू कहलाता है और बाद में यरूशलेम में स्थित मंदिर होगा। लैव्य व्यवस्था 24 का अंतिम भाग मुख्य रूप से एक बहुत ही गंभीर प्रकृति के अपराध से संबंधित है, ईषणिंदा, और दूसरे स्थान पर सामान्य रूप से न्याय के बारे में। अब हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उसके बारे में हम पहले भी सुन चुके हैं। कुछ मामलों में जानकारी आम तौर पर दोहराई जाती है, अन्य मामलों में यह अतिरिक्त जानकारी जोड़ती है जो महत्वपूर्ण है। वैसे ऋषियों और रब्बियों ने लैव व्यवस्था के इस भाग के साथ संघर्ष किया, और जब हम इस पर पहुंचेंगे तो मैं आपको असहमति और चिंता का क्षेत्र दिखाऊंगा। लैव व्यवस्था 24 पूरा पढ़ें। बस हमें याद दिलाने के लिए पद एक हमें बताता है कि हम जो परेश रहे हैं वह यहोवा ने मूसा को बताया था, और बस हमें याद दिलाने के लिए हम लगभग गलती से प्रभु शब्द के हर उदाहरण जब यह दिव्य का उल्लेख कर रहा है, और हमारे पुराने नियम में ईश्वर शब्द के हर उदाहरण को यहोवे शब्द से बदल सकते हैं। ईश्वर का नाम हम ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम उस प्रतिस्थापन द्वारा मूल को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। मेरा मतलब इस विषय को जड़ से खत्म करना नहीं है, लेकिन मैं दिन ब दिन और अधिक कारण खोजता रहता हूं कि हमारे शास्त्रों में ईश्वर के नाम को पुनर्स्थापित करना क्यों महत्वपूर्ण है। और 99% समय बिल्कुल शाब्दिक रूप से 99% समय हम अपने बाइबल में प्रभु और ईश्वर शब्द देखते हैं। पुराने नियम में मूल इब्रानी शब्द युद्ध हेह वव हेह था यहोवा। यह अनुमान या रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं है, ये केवल तथ्य है। हमारे पास न केवल इब्रानी में मसोरेटिक ग्रंथ हैं जो 800 ईसा पूर्व के हैं, बल्कि अब हमारे पास मृत सागर स्क्रॉल भी है जिनमें तुलना के लिए अधिकांश पुराना नियम पुस्तकें हैं, और वे कम से कम मसीह के जन्म के समय की हैं और संभवतः 1 सदी पहले की है। और सभी मामलों में यह बहुत दुर्लभ है कि हम यहोवा के संदर्भ में ईश्वर या प्रभु के लिए इब्रानी शब्दों का उपयोग करते हैं, बल्कि उसका व्यक्तिगत नाम 6000 से अधिक बार इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि लैव्य व्यवस्था 24 की शुरुआत में इस्तेमाल किया गया था। यहोवा ने इसराइलियों को निर्देश दिया कि उन्हें मेनोराह को जलाने के लिए साफ शुद्ध जैतून के तेल का उपयोग करना चाहिए, बरा सुनहरा दीपक स्टैंड जो पवित्र स्थान के पवित्र स्थान में स्थित है। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने जा रहा हूं जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर अनुवाद में खो जाती हैं। मैं सबसे पहले आपको नया नियम में एक महत्वपूर्ण पद की याद दिलाना चाहता हूं जो तोरा को मसीहा से जोड़ता है। यीशु, यीशुआ, यह कहते हैं हमें यूहन्ना 5:40, क्योंकि यदि तुम मूसा पर विश्वास करते तो तुम मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उसने मेरे बारे में लिखा है। 40:1, लेकिन यदि तुम उसके लेखन पर विश्वास नहीं करते तो तुम मेरे शब्दों पर कैसे विश्वास करोगे। तोरह में बहुत सी ऐसी प्रतिमाएं, प्रकार और छायाएं हैं जो मसीहा के आने और उसके उद्देश्य का वर्णन करती हैं। और यहां लैव्य व्यवस्था की इस दूसरी आयत में पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा छिपा है। हम जानते हैं कि मेनोराह मसीहा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह दुनिया का प्रकाश है, और विशेष रूप से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक सीधे हमारे लिए उस संबंध को बनाती है। हमें इसके बारे में अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। खैर, मेनोराह को प्रकाश प्रदान करने के लिए ईंधन के रूप में कुछ जलाने की आवश्यकता होती है, और उस चीज को शुद्ध जैतून के तेल के रूप में वर्णित किया गया है। उस समय अन्य चीजें उपलब्ध थीं और नियमित रूप से जलाने और इस प्रकार प्रकाश उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाती थी। पशु वसा, सूखे पशु गोबर, समुद्री जीवों से तेल, मोम, यहां तक कि पेट्रोलियम जो पृथ्वी में छोटी छोटी दरारों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से उबलता था। लेकिन यहोवा ने यह आवश्यक किया कि मेनोराह में केवल जैतून के तेल का उपयोग किया जाए। हम पूरे बाइबल में पाते हैं कि जैतून के पेड़ और इज़राइल के बीच एक संबंध बनाया गया है। अंततः जैतून का पैर शास्त्रों में इज़राइल का प्रतीक बन जाएगा।
जैतून का तेल निकालने के लिए उन्हें संसाधित करने के कई तरीके थे। आम तौर पर उन्हें दबाया जाता था, कुचला जाता था और मसला जाता था तेल निचोड़ने के लिए। लेकिन यहां लेव्य व्यवस्था में हमारे पास एक असामान्य इब्रानी शब्द है जिसका उपयोग जैतून के तेल के ईंधन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब इसे मेनोराह के लिए उपयोग किया जाना है। इब्रानी क्रिया कथित है और इसका अर्थ है पीटा। जैतून को कुचलना, पीटना चाहिए, तेल निकालने के लिए दबाया नहीं जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि इब्रानियों को इस बात का कोई सुराग नहीं था कि ऐसा क्यों जरूरी था। रशी ने इस शब्द के इस्तेमाल पर टिप्पणी की है और वह खुद भी इस बात से कुछ हद तक असमंजस में था कि जैतून को विशेष रूप से क्यों पीटा जाना चाहिए। मानक तरीके से जैतून को मोर्तार और मूसल से कुचलना बहुत तेज और आसान था और बाद में जैतून के प्रेस का इस्तेमाल किया गया। लेकिन हमारे पास यह समझने की क्षमता है कि यीशु मसीहा को बुरी तरह पीटा जाएगा, कठोर रूप से मारा जाएगा, फिर भी मसीहा को कुचला नहीं जाएगा, उसकी हड्डियों को तोड़ा या चूर्ण नहीं किया जाएगा। जैतून के तेल की प्रक्रिया जिसमें जैतून को मेनोराह में इस्तेमाल करने के लिए कुचलने और दबाने के बजाय पीटा जाता है, एक प्रकार और पैटर्न स्थापित करती है। मुझे कुछ बातें स्पष्ट करने के लिए भी कुछ समय चाहिए। बहुत कम ही अंग्रेजी अनुवादों में मेनोराह शब्द का सीधा प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इसका अनुवाद लैंप स्टैंड या गोल्डन लैंप स्टैंड के रूप में किया जाता है। समझें, जब आप लैंप स्टैंड या गोल्डन लैंप स्टैंड शब्द का प्रयोग देखते हैं, और इसमें नया नियम भी शामिल है, तो इसका तात्पर्य मंदिर के मेनोराह से है।
प्रकाशित वाक्य में यीशु के इस सुप्रसिद्ध कथन को याद करें। प्रकाशित वाक्य 2:5, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, नहीं तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा यदि तू मन न फिराएगा।
यदि आपके पास संपूर्ण यहूदी बाइबल है तो शब्द लैंप स्टैंड को सही ढंग से मेनोराह शब्द से बदल दिया गया है। महत्व यह है कि मसीहा के कार्य की उपमाएं सीधे मंदिर मेनोराह जैसी पवित्र और पवित्र चीजों से जुड़ी हुई है, और ऐसा इसीलिए है ताकि हम उस संबंध को देख सकें।
जैतून का पैर इज़राइल का प्रतीक है और सबसे शुद्ध जैतून का तेल सबसे शुद्ध इज़राइली यीशुआ का प्रतिनिधित्व करता है। यीशुआ ने इज़राइल के स्वर्गीय आदर्श को मूर्त रूप दिया, जिसे संत पौलुस शब्दों की कमी के कारण ने सच्चा इज़राइल कहा। सच्चा इज़राइल इज़राइल के सांसारिक और भौतिक राष्ट्र का आध्यात्मिक प्रतिरूप है, एक बार फिर से हमारी द्वैत की वास्तविकता। और यह यीशुआ ही है जो सबसे शुद्ध ईंधन है, जो एक अंधेरी दुनिया के लिए सबसे शुद्ध प्रकाश या बेहतर ज्ञान प्रदान करता है। हम उसके शिष्यों के रूप में उसका अनुकरण करना है। हमें प्रकाश के लिए शुद्ध और स्वच्छ ईंधन भी बनना है। हम इन शरीरों में अपने उद्धारकर्ता की पवित्रता कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें पवित्रता के लिए प्रयास करना है। कुछ ही मिनटों में मैं आपको एक और जगह दिखाऊंगा जहां मसीहा की सेवकाई लेव्य व्यवस्था के इस 24वें अध्याय में बुनी गई है। अगले कुछ पद मेनोराह की देखभाल कैसे की जानी चाहिए इस बारे में कुछ बातें स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए पद 2 के अंतिम कुछ शब्दों का अनुवाद आमतौर पर दीपक को लगातार जलाना के रूप में किया जाता है। कुछ संस्करण कहेंगे दीपक को हमेशा या हमेशा जलाना। इससे समस्या पैदा होती है क्योंकि अगले पद पद 3 में कहा गया है कि दीपक शाम से सुबह तक जलना चाहिए, जो हमेशा से काफी अलग है। क्या हुआ?
इब्रानी शब्द जिसका आमतौर पर निरंतर या हमेशा के रूप में अनुवाद किया जाता है वह है तामित। जब तामित को विशेषण या क्रिया विशेषण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि यहां है, तो इसका मतलब लगातार या हमेशा नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है नियमित रूप से। हमारे मामले में इस संदर्भ में शब्द प्रतिदिन शायद सबसे अच्छा अनुवाद है। इसलिए पद को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए, प्रतिदिन दीपक जलाना।
अब पद 3 पर नजर डालें। यह कहता है कि दीपक शाम से सुबह तक जलते रहेंगे, और फिर अजीब तरह से निरंतर शब्द जोड़ता हुआ प्रतीत होता है।
इसका मतलब है कि अधिकांश बाइबल कहती हैं शाम से सुबह तक प्रभु के सामने लगातार, जो स्पष्ट रूप से बहुत अधिक समझ में नहीं आता है। ये केवल अंधेरे के घंटों के दौरान और एक ही समय में लगातार कैसे हो सकता है। मैंने ऐसी टिप्पणियां भी पढ़ी हैं जो कहती हैं कि मेनोराह रात और दिन जलता था, क्योंकि बाइबल कथित तौर पर कहती है कि उन्हें लगातार जलना चाहिए। गलत। और निश्चित रूप से ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यह पिछली आयत के अनुवाद से मेल खाए, जिसका अनुवाद भी निरंतर या इसी तरह के किसी अन्य शब्द के रूप में किया गया है जिसका अर्थ वही है। फिर से इब्रानी शब्द तामिद है जिसका अर्थ नियमित रूप से है, ना कि लगातार। इसलिए समस्या का समाधान काफी आसानी से हो जाता है। और वैसे पद वास्तव में पड़ता है शाम से सुबह तक यहोवा के सामने नियमित रूप से। जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है कि मेनोराह केवल अंधेरे के घंटों के दौरान ही जलता था, और इसमें कितना महान प्रतीकवाद है। मेनोराह स्वर्ण दीपस्तंभ द्वारा दर्शाया गया मसीहा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए पृथ्वी पर भस्म हो गया था। एक अंधेरी जगह में प्रकाश डालने के लिए, ईंधन बनने के लिए दुनिया। जब वह शासन करने के लिए वापस आएगा तो वह ईंधन नहीं होगा जिसे भस्म किया जाएगा, वह राजा होगा जो अंधकार पर नहीं बल्कि प्रकाश के स्थान पर शासन करेगा। जैसा कि हमें प्रकाशित वाक्य में बताया गया है कि कोई सूर्य और कोई चंद्रमा नहीं होगा और दीपक की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहोवा हमारा प्रकाश होगा। हमारे ब्रह्मांड में भौतिक प्रकाश का उत्पादन ईंधन के रूप में किसी चीज के भस्म होने से होता है। हमारे ब्रह्मांड में प्रकाश पदार्थ के ऊर्जा में रूपांतरण से उत्पन्न होता है, चाहे वह जैतून का तेल, लकड़ी, पेट्रोलियम, गैसोलीन या हाइड्रोजन हो, जो हमारे सूर्य सहित तारों को ईंधन देता है। जब यीशु यहाँ भौतिक रूप से थे तो उनके द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने का एकमात्र तरीका उनका भस्म होना था। दोस्तों, यही एकमात्र तरीका है जिससे हम प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, हमारे भस्म होने से। अगर हम प्रकाश उत्पन्न करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन का उपयोग और उपभोग करना चाहिए। उसके लिए उपभोग करना चाहिए, पदार्थ का ऊर्जा में रूपांतरण होना चाहिए। हम शुद्ध जैतून के तेल से भरा एक बर्तन हो सकते हैं जो हमारे दिलों में यीशु को रखता है, लेकिन जब तक आग नहीं जलाई जाती तब तक तेल का उपभोग नहीं होता। जब तक हम अपने पास मौजूद चीजों में क्रिया ऊर्जा नहीं डालते तब तक कोई प्रकाश नहीं निकलता। सत्य का ज्ञान गर्म और कोमल और शांतिपूर्ण महसूस करते हुए बैठना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। हमें अपना समय, अपने संसाधन और अपने जीवन का उपयोग उसके लिए करना चाहिए, अन्यथा हम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और हम उन लोगों में से एक होने के लिए उत्तरदायी हैं जो जब प्रभु लौटते हैं तो उनसे मिलने के लिए दौड़ते हैं और उनका अभिवादन करते हैं, प्रभु प्रभु, जिस पर यीशु जवाब देते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। हालांकि मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि उनके लिए हमारा उपभोग नहीं है जो हमें उनके लिए मोक्ष लाता है, बल्कि हमारा उपभोग हमारे मोक्ष को समझने और उसे हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से घटित होने देने का परिणाम है।
मेनोराह के निर्देशों के बाद पद 5-9 में उस चीज के बारे में बताया गया है जिसे आम तौर पर शोब्रेड कहा जाता है। ये 12 बहुत बड़ी रोटियां हैं, खमीर वाली रोटियां, जो पवित्र स्थान के अंदर एक मेज पर रखी जाती है और उन्हें दो पंक्तियों में रखा जाना चाहिए। जैसा कि हम मेज के अनुमानित आयामों 2 फीट वर्ग से थोड़ा ज्यादा को जानते हैं, हम जानते हैं कि रोटियों को एक दूसरे के ऊपर ढेर करके रखना था। प्रत्येक रोटी के लिए लगभग 24 लीटर, लगभग 5 पिंट सूजी के आटे की आवश्यकता होती है। प्रत्येक रोटी का वजन लगभग 4 पाउंड होता। अब देवताओं के मंदिर में रोटी या अन्य भोजन रखना उस समय के मध्य पूर्वी समाज में और मिस्र में भी बहुत सामान्य और प्रथागत था, लेकिन यहां इब्रानियों के बीच परमेश्वर यह स्पष्ट करता है कि भोजन उसके लिए नहीं है, यह भोजन पुजारियों का हिस्सा होना चाहिए। 2 पंक्तियों या ढेर या शोब्रेड का प्रतीकवाद उन 2 बड़े पत्थरों से मेल खाता है जो महायाजक के एपोद का हिस्सा थे। इन 2 पत्थरों पर इसराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे, प्रत्येक पत्थर पर 6 नाम। लेकिन तथ्य यह है
कि 12 दो समूहों में विभाजित हैं और दो पत्थरों पर इज़राइल के 12 नाम हैं जो दोनों के बीच विभाजित हैं। मुझे बताता है कि प्रतीकवाद एक और कदम आगे बढ़ता है कि निकट भविष्य में माउंट सिनाई पर कानून दिए जाने के दिन से इज़राइल दो भागों दो घरों में विभाजित हो जाएगा। बेशक न तो मूसा और न ही इसराइलियों ने अनुमान लगाया होगा कि ऐसी बात निकट थी। पद 7 को थोड़ा सा स्पष्ट करने की आवश्यकता है। सामान्यतः अनुवादों में कहा गया है कि लोबान को शो ब्रेड की रोटियों पर रखा जाना था, इसलिए हमें जो चित्र मिलता है वह यह है कि सुगंधित और बहुत महंगा मसाला लोबान प्रत्येक रोटी के ऊपर छिड़का जाना है। लोबान निश्चित रूप से सुगंधित होता है, लेकिन इसका स्वाद कितना अच्छा है यह एक अलग मामला है। वास्तव में इब्रानी पूर्व सर्ग अल, जिसका आम तौर पर अनुवाद ऊपर लोबान को रोटी पर रखना किया जाता है, गलत है। अल का अर्थ ऊपर नहीं है, इसका अर्थ है बगल में या निकट या साथ में। तो जो हुआ वह यह था कि लोबान को शोब्रेड की मेज के बगल में दो धूपदानों में रखा गया और फिर धूप के रूप में जलाया गया। हमें मंदिर में इस्तेमाल की जाने वाली शोब्रेड के बारे में सिर्फ दो चार तरह के संदर्भ मिलते हैं। सबसे उल्लेखनीय वह है जब यीशु सप्त के दिन अपनी उपचार शक्ति के इस्तेमाल का बचाव कर रहे थे। मत्ती 12 का एक, उस समय यीशु सप्त के दिन अनाज के खेतों से होकर जा रहे थे और उनके शिष्यों को भूख लगी और वे अनाज की बालें तोड़कर खाने लगे। 2, लेकिन जब फरीसियों ने यह देखा तो उन्होंने उससे कहा, देख तेरे शिष्य वह कर रहे हैं जो सप्त के दिन करना उचित नहीं है। 3, लेकिन उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद और उसके साथियों ने क्या किया जब उसे भूख लगी? 4, कैसे वह परमेश्वर के घर में गया और उन्होंने पवित्र रोटी शोभ्रेड खाई, जिसे खाना न तो उसके लिए और न ही उसके साथियों के लिए बल्कि केवल याजकों के लिए उचित था। तो मंदिर में शोभ्रेड को प्रदर्शित करने और यह प्रमाणित करने की यह प्रथा कि यह केवल पुजारियों द्वारा खाने के लिए थी, यीशु ने यहां नया नियम में पूरी तरह से पुष्टि की है कि दाऊद तकनीकी रूप से इसे खाने के लिए कानून तोड़ रहा था। उनका कहना यह था कि ऋषियों और रब्बियों को दाऊद द्वारा उस शोब्रेड में मदद करने से कोई समस्या नहीं थी, पास कोई अधिकार नहीं था। यह समझा गया कि जब जीवन और कल्याण की बात आती है तो कभी कभी इसे कानून की सबसे सख्त व्याख्या के खिलाफ तौलना पड़ता है। यीशुआ कल वी होमर नामक वाद विवाद की प्रसिद्ध रब्बी पद्धति का उपयोग कर रहा था, प्रकाश बनाम भारी का वजन। तो वह मूल रूप से कह रहा है कि अगर उन्हें दाऊद द्वारा पवित्र रोटी का उपयोग करके भूखे लोगों को खिलाने से कोई समस्या नहीं थी तो उन्हें पवित्र सप्त पर उसके भूखे शिष्यों को खिलाने से कोई समस्या क्यों होनी चाहिए? प्रत्येक नए सप्त के लिए सप्ताह में एक बार शोब्रेड को बदल दिया जाता था तथा जो हटा दिया जाता था उसे याजकों को दे दिया जाता था। पद 10 ईशनिंदा और अन्य गंभीर अपराधों के खिलाफ कानून से निपटना शुरू करता है। मैंने कई मौकों पर देखा है कि यह एक मिश्रित भीड़ थी जो मिस्र से आई थी, और यहां हमें एक इसराइली महिला का उदाहरण दिया गया है जिसने एक मिस्री पुरुष से विवाह किया था और इस मिश्रित बेटे को जन्म दिया। हम मान सकते हैं कि इस तरह के मिश्रण के हजारों हजारों परिवार थे जो मिस्र से इसराइल का अनुसरण करते थे। मुद्दा यह है कि आधे इसराइली ने एक पूर्ण रक्त वाले इसराइली के साथ लड़ाई की, और लड़ाई की गर्मी के दौरान आधे मिस्र ने ईशनिंदा में नाम यानी शेम परमेश्वर यहोवा का उच्चारण किया। आधुनिक भाषा में उसने एक अपशब्द कहा, उसने व्यर्थ में परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल किया। निर्गमन 20 का 7, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले उसको वह निर्दोष न ठहराएगा। यहां हम ऐसे कृत्य के लिए सजा देखते हैं, मौत। इस पूरे मामले का संदर्भ एक न्यायाधीश के सामने मामले को पेश करने जैसा है। इसमें अपराध का एक विस्तृतम उदाहरण दिया जाता है और फिर सजा निर्धारित की जाती है। यह दिलचस्प है कि यह स्पष्ट किया गया है कि यह व्यक्ति जिस गोत्र से आया था, कम से कम उसकी मां का गोत्र दान का गोत्र था। वादा किए गए देश में प्रवेश करने के कुछ समय बाद ही दान ने इसराइल के अन्य गोत्रों से अलग होकर एक पंथ बना लिया। उत्तरी इसराइल में दान का शहर उनके पंथ का केंद्र बन गया। उन्होंने वहां एक मंदिर और एक वेदी बनाई और सभी प्रकार के घृणित मूर्ति पूजक अनुष्ठानों का पालन किया। आज भी कोई उस सटीक स्थान पर जा सकता है। इसलिए दान ने इसराइलियों के बीच बुरे लड़कों के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की, और हमें ऐसे कई मामले मिलेंगे जहां यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि दान के गोत्र के किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया और फिर सजा निर्धारित की गई, और इस प्रकार दान को कभी कभी एक वस्तु सबक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि हमें इस अध्याय में मसीहा के कुछ छिपे हुए संदर्भ मिलते हैं। मैंने एक को प्रदर्शित किया है और यहां हम एक और पाते हैं, लेकिन हम इसे वास्तव में केवल तब देखते हैं जब हम इब्रानी की जांच करते हैं। पद 11 में जहां यह कहा गया है कि इसराइली महिला के बेटे ने परमेश्वर के नाम का उच्चारण या ईशनिंदा की, आपके बाइबल संस्करण के आधार पर वहां इस्तेमाल किया गया इब्रानी शब्द नकाब है। हमारे पाठ में पहले हमने देखा कि जैतून, जिनसे मेनोराह को ईंधन देने के लिए पवित्र जैतून का तेल निकाला जाता था, उन्हें कुचला नहीं जा सकता था बल्कि उन्हें पीटा जाना था। यहां हम पाते हैं कि इब्रानी शब्द नकाहब का उपयोग परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में लेने के बड़े अपराध की प्रकृति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। शाब्दिक रूप से नकाहब का अर्थ है छेदना, और इसका आम तौर पर ईशनिंदा के रूप में अनुवाद किया जाता है। इसलिए नकाब इसका अर्थ है छेदना, अर्थात घाव करना, हानि पहुंचाना। हम पाते हैं कि यहोवा के नाम का उपयोग करके श्राप देने में आदर इसराइली आधा मिस्री ने परमेश्वर के नाम को पढ़ा था। जैसा कि हमने पहले पाया कि दुनिया के ज्ञान के लिए ईंधन प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जैतून को पीटा जाना था। यदि मसीह के जुनून का वर्णन करने के लिए नए नियम में अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली दो नाटकीय विशेषताएं हैं, तो वे हैं पीटा जाना और छेदा जाना। वास्तव में मूसा ने मसीहा के बारे में बहुत कुछ कहा, जैसा कि यीशु ने कहा कि उसने किया, और हम इसे और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यदि हम केवल तोरह की जांच उसके यहूदीपन के साथ करें बजाय इसके कथित दोष और अप्रासंगिकता की घोषणा करने के। पद 14 हमें बताता है कि ईश निंदा करने वाले को छावनी से बाहर ले जाकर मार डाला जाना था। हमने पहले भी शिविर के बाहर शब्द पर चर्चा की है। इसका शाब्दिक अर्थ है उस जगह से दूर जहां इसराइलियों ने अपने तंबू लगाए थे। दोषी व्यक्ति को शिविर के बाहर ले जाने का एक कारण यह भी था कि वह किसी ऐसी चीज की उपस्थिति से होने वाला धार्मिक अशुद्धता से बच सके जो वह बनने वाला था, एक लाश। लेकिन इससे भी ज्यादा यह आज्ञा और परंपरा थी कि शिविर के बाहर ही फांसी दी जाए। हम अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन तथ्य यह है कि यहूदी कानून के अनुसार यीशु को शिविर के बाहर फांसी दी जानी थी, और हमें इब्रानियों में बताया गया है कि वास्तव में उन्हें शिविर के बाहर फांसी दी गई थी। इससे हमें यह संकेत मिलता है कि उन्हें संभवतः कहां सूली पर चढ़ाया गया था, और इसके अलावा यह भी कि लगभग निश्चित रूप से वे पारंपरिक स्थान जिन्हें यरूशलेम आने वाले अधिकांश ईसाई तीर्थयात्री कलवरी के स्थल के रूप में देखते हैं, वे स्थल नहीं हो सकते थे, क्योंकि वे स्थल उन दिनों यरूशलेम शहर की शिविर सीमाओं के काफी अंदर थे।
पद 14 हमें यह भी बताता है कि अपराधी को पूरे समुदाय द्वारा पत्थरवाह करके मार डाला जाना था। पत्थर मारना इस बात का प्रतीक था कि इस व्यक्ति को पूरे समुदाय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, और यह स्वीकारोक्ति थी कि उसका व्यवहार पापपूर्ण था। पत्थर मारने से पहले हाथ रखना दिलचस्प है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसराइल के नागरिकों ने उसे पकड़ लिया और पत्थर मारने के रास्ते में उसके साथ मारपीट की, बल्कि यह एक बहुत ही समान कार्य का प्रतीक है। जैसे एक उपासक बलि के लिए पुजारी के पास एक जानवर लाता है और फिर बलि के जानवर के सिर पर अपने हाथ रखता है। जब किसी जानवर की बलि दी जानी होती है तो उपासक द्वारा जानवर के सिर पर हाथ रखने के माध्यम से इस जानवर पर स्वामित्व और अधिकार परमेश्वर को हस्तांतरित हो जाता है। उपासक भी एक निश्चित तरीके से अपने पापों को खुद से
उस जानवर पर स्थानांतरित कर रहा है जिसका खून उपासक के लिए प्रतिस्थापन प्रायश्चित के रूप में बहाया जाएगा। हमें बताया गया है कि लोगों के एक खास समूह को अपराधी पर हाथ रखने का आदेश दिया गया है जिन्होंने उसे ईशनिंदा करते हुए सुना है। बहुत से लोगों ने शारीरिक जर्प होते हुए देखी होगी, लेकिन बहुत से लोगों ने उस व्यक्ति को ईशनिंदा करते हुए चिल्लाते हुए सुना होगा। बाइबल के मानकों के अनुसार जो सुनता है वह कम से कम उतना ही अच्छा गवाह है जितना कि जो देखता है। मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण ईश्वर सिद्धांत है। गवाहों के समुदाय द्वारा सामूहिक रूप से अपराधी पर हाथ रखने से वे यह घोषणा कर रहे थे कि वे उसके खिलाफ फैसले पर सहमत हैं और उसका खून उसके ही सिर पर होगा। अब उसका खून उसके ही सिर पर था कि यह धारणा गैर यहूदियों के आम तौर पर सोचने से थोड़ा अलग अर्थ रखती है। जब हम उन शब्दों को सुनते हैं तो हमारा विचार आमतौर पर यह होता है कि इसका मतलब है ठीक है ये आपकी गलती थी, आप बेहतर जानते थे लेकिन फिर भी आपने ऐसा किया, इसलिए आपको वही मिल रहा है जो आपके लिए सही है। लेकिन इब्रानियों का विचार ऐसा नहीं था। इस पर मेरा अनुसरण करें क्योंकि यह प्राचीन पहेली का एक और दिलचस्प टुकड़ा है जो प्राचीन इब्रानी समाज है जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र का संदर्भ बनाता है। जब किसी जानवर की बलि दी जानी थी तो उपासक द्वारा जानवर के सिर पर हाथ रखकर उपासक का अपराध प्रतीकात्मक रूप से जानवर पर स्थानांतरित कर दिया जाता था। जब जानवर का खून बहाया जाता था, जब उसे अनुष्ठानिक रूप से मार दिया जाता था तो उपासक के पापों का प्रायश्चित किया जाता था क्योंकि जानवर का जीवन उपासक के जीवन का कानूनी विकल्प था। इसका मतलब है कि उपासक को अपने पाप के लिए मजदूरी के रूप में मृत्यु का अनुभव करना चाहिए था और अपने खून से अपने पाप का भुगतान करना चाहिए था। इसके बजाय एक निर्दोष जानवर उपासक की जगह एक प्रतिस्थापन मौत मर गया, और यह न केवल परमेश्वर को स्वीकार्य था बल्कि यह व्यवस्था परमेश्वर द्वारा स्थापित की गई थी। यह यहोवा की न्याय प्रणाली का संपूर्ण आधार है। यह क्रूस पर मसीहा की मृत्यु का संपूर्ण आधार है। यदि हम कहें, जैसा कि चर्च के अधिकांश लोग कहते हैं, कि मसीह के जन्म के साथ ही व्यवस्था समाप्त हो गई और चूंकि प्रायश्चित और प्रतिस्थापन पर आधारित बलिदान प्रणाली व्यवस्था के केंद्र में थी, तो हमारे लिए प्रतिस्थापन प्रायश्चित के रूप में यीशु की मृत्यु का कोई संदर्भ या अर्थ नहीं होता।
झल्लादों द्वारा अपराधी पर हाथ रखने से यह संकेत मिलता है कि कोई प्रतिस्थापन नहीं होगा। अपराधी का अपराध उसका अपना था और वह दंडित व्यक्ति अपने अपराध को बलि के जानवर पर स्थानांतरित नहीं कर सकता था, बल्कि अपने अस्तित्व के अंतिम कार्य के रूप में अपराधी को अपने पापों के लिए मरना होगा। इसके अलावा यह इब्रानी मान्यता थी कि मृत्यु दंड दिए जाने से अपराधी ने वास्तव में अपने स्वयं के रक्त से अपने पापों की कीमत चुकाई और इसलिए उसके पाप का किसी तरह से प्रायश्चित किया गया। अब इसका वास्तव में क्या मतलब था यह स्पष्ट नहीं है। चूंकि मृत्यु के बाद जीवन इसराइलियों के लिए एक बहुत ही अस्पष्ट अवधारणा थी और चूंकि यीशु के आने तक मरने और स्वर्ग जाने की कोई अवधारणा नहीं थी, इसलिए यह जानना कठिन है कि क्या उनके दिमाग में यह विचार था कि अपराधी को वास्तव में अपने स्वयं के रक्त के बहाने उसके अपराधों के लिए क्षमा कर दिया गया या क्या। अगर उन्हें लगा कि इसका मतलब है कि उसे माफ कर दिया गया है तो वे गलत थे। मृत्यु दंड दिया जाना ऐसा कार्य नहीं था जिसके कारण उसे क्षमा मिल जाती थी, बल्कि ऐसा कार्य था जिसके कारण वह ईश्वर के विश्वासियों के समुदाय से हमेशा के लिए अलग हो जाता था।
इस विशेष अपराधी ईशनिंदक का उदाहरण दिए जाने के बाद यहोवा कहता है, यही बात इज़राइल के किसी भी व्यक्ति के साथ घटित होगी, नागरिक या और इस विदेशी, जो कोई भी परमेश्वर के नाम की निंदा करता है उसे पत्थरवाह किया जाएगा, या अधिक शाब्दिक रूप से जो कोई भी परमेश्वर के नाम को छेदता है उसे मार दिया जाएगा।
कृपया ध्यान दें कि यहोवा के नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल करना कितना गंभीर है। यह भी ध्यान दें कि नया नियम में हमें ईशनिंदा के भौतिक सांसारिक कृत्य का आध्यात्मिक प्रतिरूप मिलता है, लूका 12:10, और जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध कोई बात कहेगा उसे क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करेगा उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। लैव्य व्यवस्था में ईश्वर के नाम की निंदा करने वाले के लिए न तो सांसारिक क्षमा उपलब्ध है और न ही प्रतिस्थापन प्रायश्चित। वह अपना सांसारिक जीवन खो देता है, उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। लूका में पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले के लिए न तो क्षमा उपलब्ध है और न ही प्रतिस्थापन प्रायश्चित, अर्थात कोई मसीह के रक्त पर निर्भर नहीं हो सकता है। आधुनिक समय में उसे न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है और न ही उसका शारीरिक जीवन खो सकता है, लेकिन वह अपना शाश्वत जीवन खो देता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ईश निंदा क्या है? फिर लैव्य व्यवस्था पढ़ें। नया नियम आपसे अपेक्षा करता है कि आप पहले से ही जानते हों कि यह क्या है। पवित्र आत्मा की निंदा करना, उसका गलत प्रतिनिधित्व करना, उसके खिलाफ बोलना या उसके नाम या विशेषताओं का अनुचित तरीके से उपयोग करना या उसकी प्रतिष्ठा को खराब करना है। यह दावा करना कि पवित्र आत्मा ने आपको कुछ करने का निर्देश दिया है जबकि आप पूरी तरह जानते हैं, या यदि आप अपने शब्दों के साथ लापरवाह हैं जो उसने नहीं किया है, तो यह पवित्र आत्मा की निंदा करना है। यीशु के ईश्वरत्व को त्यागना परमेश्वर की पवित्र आत्मा की निंदा करना है, क्योंकि मसीहा पर भरोसा रुआख हाकोदेश प्राप्त करने की शर्त है। इसके अलावा परमेश्वर के नामों में से एक रुआख हाकोदेश है। इसके बाद आयत 17 में हत्या के लिए दंड की बात दोहराई गई है और इसे ईश निंदा के अपराध से जोड़ा गया है, क्योंकि उल्लंघनकर्ता के लिए मृत्यु दंड भी निर्धारित किया गया है। लेकिन हमारे इब्रानी शब्द नकाब के साथ फिर से ध्यान दें, जिसका अर्थ है छेदना, कि यहां जो दर्शाया जा रहा है वह यह है कि कोई भी व्यक्ति यहोवा के विरुद्ध आध्यात्मिक रूप से उसके पवित्र नाम की निंदा करने से अधिक हिंसक अपराध नहीं कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति मानवता के विरुद्ध शारीरिक रूप से किसी साथी इंसान की हत्या करने से अधिक हिंसक अपराध नहीं कर सकता है। वास्तव में छेदना नकाब शब्द का उपयोग करके पवित्र शास्त्र कह रहा है कि ईश निंदा करना ईश्वर की हत्या करने के प्रयास के आध्यात्मिक समकक्ष है। और मुझे ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि आधुनिक समय के विश्वासियों के लिए अपराध को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही ध्यान दें कि यह विदेशियों के साथ साथ इसराइलियों के लिए भी लागू होता है। पद 17 से शुरू होकर विषय बदल जाता है। हमें बताया जाता है कि उस युग के मध्य पूर्व में कुछ संस्कृतियों के मानक अभ्यास के विपरीत इब्रानियों को जानवर के जीवन के बदले में किसी इंसान की जान नहीं लेनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, किसी के जानवर की हत्या करने पर मानव अपराधी को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। यह आयत हमें जिस चीज से परिचित कराती है उसे कुछ विद्वानों ने लैटिन में लेक्स टेलियोनिस कहा है, प्रतिशोध का नियम। यह लैव्य व्यवस्था 24 का क्षेत्र है जिसके साथ रब्बी और संत तथा ईसाई विद्वान वास्तव में संघर्ष करते रहे हैं और उनके बीच मतभेद हैं। और हम पाते हैं कि इस अध्याय में एक तरह का प्रतिशोध, जब वैध तरीके से किया जाता है, वास्तव में ईश्वर का न्याय माना जाता है, और यह सिद्धांत आयत 19-20 में बताया गया है। यहीं से हमें आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का कथन मिलता है। फिर भी यह उस समय के लिए मानक से अलग तरह का प्रतिशोध है, और सदियों बाद रोम के समय में जो लेक्स टेलियोनिस के सिद्धांत पर काम करता था। चलो हम थोड़ी देर यहीं रुकें, क्योंकि वैसे भी यह अध्याय यहीं समाप्त हो गया है। प्राचीन काल से ही कई इब्रानी संतों ने इस बात पर जोर दिया है कि पद 19-20 के शब्दों का आशय यह नहीं था कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की बांह तोड़ता है तो बदले में अपराधी की बांह भी टूटनी चाहिए, न ही यह कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सिर से दांत तोड़ता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति का भी दांत तोड़ दिया जाना चाहिए और उनकी स्थिति को निश्चित रूप से नासरत के यीशु के अलावा किसी और ने मान्य नहीं किया है। बल्कि यह आनुपातिक दंड का आह्वान था कि दंड अपराध से बरा नहीं होना चाहिए। वास्तव में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भले ही परमेश्वर ने इरादा किया हो कि हमलावर द्वारा किए गए शारीरिक नुकसान का बदला उसे ही दिया जाना चाहिए, लेकिन इब्रानी लोगों ने कभी भी किसी भी समय इस सिद्धांत का नियमित रूप से उस तरीके से पालन किया। हो सकता है कि कुछ लोगों ने गुस्से में सतर्कता शैली में ऐसा किया हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, बल्कि खासकर जानवरों को होने वाले नुकसान के मामले में और अक्सर पुरुषों के मामले में मुआवजा प्रतिशोध का पसंदीदा तरीका था। इब्रानी प्रणाली में साजा के तौर पर अंग भंग करना असामान्य था, फिर भी ऐसा लगता है कि दुर्लभ अवसरों पर ऐसा होता था। वास्तव में व्यवस्था विवरण 25 में हमें एक विशेष मामला मिलता है जिसमें एक महिला को अपने पति से लड़ने वाले पुरुष के जननांगों को पकड़ने के लिए अपना हाथ हटाने की आवश्यकता होती है। एक अन्य मामले में जो तलमूड दिखाई देता है, मैंने पढ़ा कि इस बात पर चर्चा हो रही थी कि क्या किसी अपराधी की उसके अपराध के लिए आंख निकाल दी जानी चाहिए। बहस इस तथ्य पर केंद्रित थी कि इस अपराधी की एक आंख पहले से ही नहीं थी, इसलिए उसकी दूसरी आंख निकाल देने से वह पूरी तरह अंधा हो जाएगा और परिणाम स्वरूप पूर्ण अंधापन उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए एक बहुत ही अनुचित सजा होती। हमें बाइबल में कुछ अन्य चर्चाएं तथा विभिन्न यहूदी दस्तावेजों में इस कठिन विषय पर दर्जनों चर्चाएं मिलेंगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि आशियों के बीच कुछ बहसें और चर्चाएं काल्पनिक थीं, लेकिन ज्यादातर मामले वास्तविक थे। लेकिन दुर्लभ अपवादों को छोड़कर किसी तरह के मौद्रिक मुआवजे को शारीरिक दंड से ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी और शारीरिक विकृति को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। परमेश्वर का इस पर क्या विचार था, ये एक अलग मामला है। अंत में ऋषिगण और रब्बी तथा अधिकांश ईसाई विद्वान एक बात पर सहमत हो सके कि लैव्य व्यवस्था 24 के हमारे मामले में समानता ही मुद्दा था। इसका अर्थ है कि न केवल अपराध बनाम न्याय संगत दंड का मुद्दा, बल्कि अपराधी की राष्ट्रीयता भी अलग मानक का कारण नहीं होनी चाहिए। तो हमें बार बार, जैसा कि यहां पद 22 में है, यह कहा गया है कि चाहे इजरायली हो या विदेशी, सभी के लिए एक ही कानून होगा। यह सामान्य ईसाई सिद्धांत में छेद करता है कि यहूदियों के लिए एक नियम है और अन्य जातियों के लिए दूसरा, है ना? लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर आपराधिक गतिविधि के लिए एक न्याय संगत कीमत चुकाने की मांग करते हैं। हमारी आधुनिक संवेदनाएं, विशेष रूप से पश्चिम में, कुछ हद तक आहत होती है जब हमें बताया जाता है कि लंबी जेल की सजा, मृत्यु दंड, यहां तक कि भारी जुर्माना भी प्रतिशोध है और न्याय नहीं। लेकिन वास्तव में इसके विपरीत तर्क देना कठिन है। हमें बस प्रतिशोध शब्द की ध्वनि पसंद नहीं है। प्रतिशोध का मूल रूप से अर्थ है जैसे को तैसा। यह सिर्फ इतना है कि स्थापित ईश्वरीय न्याय प्रणाली के बाहर प्रतिशोध सतर्कता है, जबकि इसके अंदर प्रतिशोध, जब ठीक से संचालित और लागू किया जाता है, न्याय संगत न्याय है। और यह निश्चित रूप से परमेश्वर का दृष्टिकोण प्रतीत होता है, जैसा कि शास्त्रों में भी शाब्दिक रूप से व्यक्त किया गया है। कहीं भी, यहां तक कि नया नियम में भी, यह नहीं कहा गया है कि आपराधिक कृत्यों के लिए कीमत नहीं चुकानी चाहिए। लेकिन आपराधिक कृत्य क्या है और इसके लिए क्या कीमत चुकानी होगी, इसकी परिभाषा ईश्वर द्वारा तोरह में निर्धारित कानूनों और अध्यादेशों के पीछे के सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित की जाती है, और इसे मनमाने ढंग से या बिना शासकीय, जनजातीय या राष्ट्रीय प्राधिकरण के लागू नहीं किया जाता है।